लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सृष्टि की रक्षा हेतु यूखरिस्तीय बलिदान में संत पापा लियो का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने कस्तल गंदोल्फो की वाटिका में सृष्टि की देखरेख और सुरक्षा हेतु तैयार किए गए यूखरिस्ती धर्म विधि प्रार्थना का उपयोग करते हुए लवदातो सी की 10वीं सालगिरह का मिस्सा बलिदान अर्पित किया। संत पापा लियो ने अपने प्रवचन के शुरू में सबों का अभिवादन करते हुए कहा कि इस खूबसूरत दिन पर मैं सबसे पहले सभी को प्रकृति के संग ईश्वर को धन्यवाद ख्रिस्तियाग अर्पित करने हेतु आमंत्रित करता हूं। इस मिस्सा बलिदान के कई कारण हैं जिसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। यह उत्सव सृष्टि की देखभाल के लिए यूखारिस्तीय धर्म विधि का पहला मिस्सा है जो वैटिकन में विभिन्न परम धर्म पीठीय समिति के कार्यों का प्रतिफल है।
Ma come sapete, la liturgia rappresenta la vita. E voi siete la vita di questo centro Laudato Si.
धर्म विधि जीवन को व्यक्त करती है और हम सभी लाउडातो सी जीवन के केंद्र बिंदु में हैं। संत पापा ने सभी विश्वासियों के स्वागत उपरांत कहा कि यह पहले शताब्दी के प्राचीन गिरजाघरों जैसा है जहां बपतिस्मा का एक फवारा होता था जिससे होकर गिरजाघर में प्रवेश करना पड़ता था। मिस्सा की शुरुआत में हमने अपने मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि हमें गिरजाघर के अंदर और बाहर उन बहुत से लोगों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो अब भी हमारे साझा घर की देखरेख की तत्कालिकता को नहीं समझते हैं। दुनिया भर में कई जगहों पर, कई देशों में लगभग हर दिन हम जो प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं उनमें से कई आंशिक रूप से मानवीय अति और उनकी जीवन शैली के कारण होती हैं। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए क्या हम खुद उस बदलाव का अनुभव कर रहे हैं या नहीं, हमें इसकी कितनी जरूरत है। आज हम एक परिचित और शांतिमय क्षण को साझा करते हैं। दुनिया की उस परिस्थिति में भी जो वैश्विक तापमान में वृद्धि और हथियारों के युद्ध के कारण जल रही है, जो संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्रों लाउडातो सी और फ्रैटेली तुत्ती के संदेश को सारग्रभित बनाता है। तूफान के कारण शिष्यों का भयभीत हो जाना आज मानवता के एक बड़े भाग का हिस्सा है। यद्यपि जयंती वर्ष के केंद्र में हम इस बात को घोषित करते हैं कि हमारी एक आशा है, हमारा इससे मिलन यीशु ख्रिस्त में हुआ है जो विश्व के मुक्ति दाता हैं। वे आज भी अपनी सर्वशक्तिमता में तूफान को शांत करते हैं। उनकी शक्ति हमें विचलित नहीं करती है बल्कि हम उसमें सृजनात्मकता को पाते हैं जो विनाश नहीं करती बल्कि जीवन लाती है, हमें नया जीवन प्रदान करती है। इस भांति हम अपने में पूछते हैं, यह कौन है? वायु और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हमारे आश्चर्य में पूछे जाने वाला यह सवाल हमारे लिए पहला कदम होता है जो हमें भय से ऊपर उठाता है। यीशु ने गलीलिया समुद्र के इर्द गिर्द प्रार्थना करते हुए जीवन व्यतीत किया। वहां उन्होंने अपने प्रथम शिष्यों को उनके स्थानों और कार्यों से निमंत्रण दिया। उन्होंने जिन दृष्टांतों का उपयोग करते हुए ईश्वर के राज्य की घोषणा की वे हमारे लिए भूमि और पानी के बीच एक गहरे संबंध को व्यक्त करते हैं जहां हम जलवायु की गति और सृष्टि के प्राणियों के जीवन को पाते हैं।
L'Evangelista Matteo descrive la tempesta come uno sconvolgimento della terra, la parola seismos.
संत पापा लियो ने कहा कि सुसमाचार लेखक संत मत्ती तूफान को एक भूकंप के रूप में व्याख्या करते हैं। वे इसका उपयोग पुनः यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की प्रभात में करेंगे। ख्रिस्त इन सारे उथल पुथल से ऊपर उठते हैं। यह सुसमाचार हमें पुनर्जीवित यीशु की झलक को प्रस्तुत करता है, जो हमारे जीवन के उतराव चढ़ाव में हमारे संग रहते हैं। यीशु वायु और समुद्र को डांटते हैं, जो उनके जीवन देने और बचाने की शक्ति को व्यक्त करती है, जो अपने में शांत हो जाते जिनके सम्मुख मानव प्राणी खोने का अनुभव करता है। संत पापा ने कहा कि हम उस सवाल की ओर लौटें, यह कौन है जिसकी आज्ञा वायु और समुद्र भी मानते हैं। कलुसियों के नाम पत्र से लिया गया पाठ हमारे लिए इसका उत्तर देता है। वह अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उनके द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। उनके शिष्य उस दिन तूफान से घिरे भयभीत यीशु ख्रिस्त के बारे में अपने ज्ञान को घोषित करने में असमर्थ थे। आज हम उस विश्वास के साथ जो हमें दिया गया है अपने में यह कह सकते हैं, वे शरीर अर्थात कलिस के सिरमौर भी हैं, वह कारण है और मृतकों में से प्रथम जीव उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये शब्द हमें इतिहास में बनाए रखते हैं, जो हमें एक जीवित शरीर बनाता है, वह शरीर जिसके शीर्ष यीशु ख्रिस्त हैं।
La nostra missione di custodire il creato, di portarvi pace e riconciliazione è la sua stessa missione.
हमारी प्रेरिताई सृष्टि की रक्षा करनी है, उसमें शांति और मेल मिलाप लाना है, जो स्वयं ख्रिस्त की प्रेरिताई है, जिसे उन्होंने हमारे लिए प्रदान किया है। हम पृथ्वी और गरीबों की रुदन को सुनते हैं, क्योंकि यह रुदन ईश्वर के हृदय तक पहुंची है। हमारा कोप ईश्वर का कोप है, हमारा कार्य ईश्वर का कार्य है। इस संदर्भ में स्तोत्र लेखक के भजन हमें प्रेरित करते हैं। प्रभु की वाणी जल पर महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी तेजस्वी है, प्रभु की वाणी प्रतापी है। यह वाणी कलिस्य को भविष्यवाणी के लिए प्रतिबद्ध करती है। सृष्टिकर्ता और प्राणियों के बीच का अटूट संबंध वास्तव में हमारी बुद्धि और हमारे प्रयासों को प्रेरित करता है, ताकि बुराई को अच्छाई में, अन्याय को न्याय में और लोभ को संगति में परिणत किया जा सके। असीम प्रेम से ईश्वर ने सभी वस्तुओं की रचना की है और हमें जीवन दिया है। यही कारण है कि असीसी के संत फ्रांसिस जीवों को भाई बहन और माता कहते हैं। केवल एक चिंतनशील दृष्टि ही सृजित वस्तुओं के साथ हमारे संबंध को बदल सकती है। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा कि बोर्गो लौदातो सी, जहां हम जमा होते हैं, जो संत पापा फ्रांसिस के कार्यों की देखरेख करती है, हमें एक प्रयोगशाला होने की मांग करती है, जिससे हम सृष्टि के साथ सामंजस्य का अनुभव कर सकें, जो हमें उपचार और मेल मिलाप करने और हमें सौंपी गई प्रकृति की रक्षा के नए और प्रभावकारी तरीके विकसित करने में मदद करे, जो हमें सौंपा गया है। अतः मैं आप सबों को, जो इस परियोजना को साकार करने के लिए समर्पित हैं, अपनी प्रार्थनाओं और प्रोत्साहन का आश्वासन देता हूं। संत पापा ने कहा कि हम जो यूखरिस्तीय बलिदान अर्पित कर रहे हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे कार्यों को स्थिरता प्रदान करती है। वास्तव में जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने लिखा है, यूखरिस्त में सृष्टि अपनी सर्वोच्च उत्कर्ष प्राप्त करती है। अनुग्रह जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है, अपने में एक अद्भुत अभिव्यक्ति है, जब ईश्वर जो स्वयं मनुष्य बनते वे अपने को सृष्टि में समाहित करते हैं। ईश्वर शरीर धारण के रहस्य की प्रकाष्ठा पर पदार्थ के एक अंश के माध्यम से हमारी अंतरंग गहराइयों तक पहुंचने का चुनाव करते हैं। यह ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से होती है, ताकि हम अपने ही दुनिया में उनका साक्षात्कार कर सकें। अपने प्रवचन के अंत में संत पापा ने संत अगुस्टिन के वचनों को उद्धृत करते हुए कहा, तेरे कार्य तेरी स्तुति करते हैं, इसलिए हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं और हम तुझसे प्रेम करते हैं इसलिए तेरे कार्यों की स्तुति करते हैं, हम विश्व में यही सद्भाव फैला सकें।
क्रिस्ती के संग संग गाऊंगा तेरी महिमा मैं गाऊंगा,
सृष्टि के संग 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 कल कल से करती झरनों के संग।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें की ओर से वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोली ने अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU द्वारा अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से 8 से 11 जुलाई तक आयोजित अच्छे के लिए AI शिखर सम्मेलन 2025 के सभी प्रतिभागियों का अभिवादन किया और ITU की स्थापना की 160वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी सदस्यों और कर्मचारियों को उनके कार्यों और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के लिए बधाई दी ताकि संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सके। टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीफोन, डिजिटल और आंतरिक संचार के माध्यम से मानव परिवार को जोड़ना चुनौतियां प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वाले क्षेत्रों में जहां लगभग 2.6 बिलियन लोगों के पास अभी भी संचार प्रौद्योगिकियों तक पहुंच नहीं है। कार्डिनल पारोली ने कहा कि मानवता एक दोराहे पर है जो AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित डिजिटल क्रांति से उत्पन्न अपार संभावनाओं का सामना कर रही है। इस क्रांति का प्रभाव दूरगामी है जो शिक्षा, कार्य, कला, स्वास्थ्य सेवा, शासन, सेना और संचार जैसे क्षेत्रों को बदल रहा है। इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी और विवेक की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AI का विकास और उपयोग आम भलाई के लिए किया जाए, संवाद के पुलों का निर्माण किया जाए और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह समग्र रूप से मानवता के हितों की पूर्ति करे। यद्यपि AI प्रणालियों के नैतिक उपयोग की जिम्मेदारी उन लोगों से शुरू होती है जो उन्हें विकसित, प्रबंधित और देखरेख करते हैं, लेकिन जो लोग उनका उपयोग करते हैं वे भी इस जिम्मेदारी में भागीदार होते हैं। इसलिए AI के लिए उचित नैतिक प्रबंधन और मानव व्यक्ति पर केंद्रित नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो केवल उपयोगिता या दक्षता के मानदंडों से परे हो। अतः हमें उस व्यवस्था की शांति में योगदान देने के साझा लक्ष्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि संत अगुस्टीन ने इसे ईश्वर का शहर कहा था, और इसलिए समग्र मानव विकास और मानव परिवार की भलाई के लिए सामाजिक संबंधों की एक अधिक मानवीय व्यवस्था और शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण समाजों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर सब कुछ युद्ध में डूब गया तो क्या होगा? यह सवाल बेनेवेंतो की 3 बच्चों की युवा माँ जायरा ने संत पापा लियो से पूछा था, जिसमें उन्होंने शांति के अधिकार पर सवाल उठाया था। यह सवाल वाटिकन महागिरजा घर द्वारा प्रकाशित पत्रिका पियासा सान पियत्रो के जुलाई अंक में पूछा गया था। पाठकों के साथ संवाद खंड में संत पापा लियो 14वें ने उत्तर दिया, आपकी पुकार ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है और सभी को, विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों को, हृदय परिवर्तन की यात्रा पर निकलने का आह्वान किया। संत पापा समझाते हैं कि शांति केवल एक इच्छा नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत दैनिक प्रतिबद्धता है जो भीतर से जन्म लेती है और ठोस कार्यों से पोषित होती है। यह हृदय में और हृदय से ही निर्मित होती है। संत पापा लियो ने कहा, हम हर स्तर पर संवाद पर जोर देते हैं ताकि संघर्ष नहीं बल्कि मुलाकात की सच्ची संस्कृति को बढ़ावा मिले और साथ ही शक्ति की सीमाओं को भी बढ़ावा मिले, जैसा कि संत पापा फ्रांसिस हमेशा आग्रह करते थे, जो हमें चुनौती देती है कि प्रार्थनाओं को जरूरी साहसी भावों और छोटे छोटे कदमों के श्रम साध्य धैर्य के साथ कैसे जोड़ा जाए। अंत में संत पापा ने लिखा, युद्ध सफल नहीं होगा और बच्चों को एक सच्ची, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का अधिकार है। उधर पेरिस स्थित नोटर डेम महागिरजाघर में आग लगने के पश्चात 5 साल के नवीनीकरण के बाद 2025 के अंत तक महागिरजाघर में 120 लाख आगंतुकों के आने का अनुमान है। नोटर डेम महागिरजाघर में आग लगने के 5 साल बाद इसके द्वार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं ताकि वे इसकी फ्रांसीसी गोथिक वास्तुकला का आनंद ले सकें। अब 7 दिसंबर 2024 को इसके पुनः खुलने के 6 महीने बाद 30 जून 2025 तक कुल 60,15,000 लोग महागिरजाघर में प्रवेश कर चुके हैं। 6 जुलाई को फ्रांसीसी समाचार पत्र ला ट्रिब्यून डिमांचे ने बताया कि औसतन प्रतिदिन 35,000 लोग नोटर डैम महागिरजाघर में आते हैं। उधर शनिवार 5 जुलाई को दक्षिण कोरिया के सियोल महाधर्म प्रांत ने गिहाई और ब्योंग आओ में धर्म उत्पीड़न के 79 कोरियाई शहीदों को संत घोषित किए जाने की 100वीं वर्षगांठ के पौत्र मिसा समारोह, उनकी शहादत पर एक नई रिपोर्ट जारी कर और एक विशेष प्रदर्शनी के साथ मनाया, जैसा कि महाधर्म प्रांत की वेबसाइट पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है। शनिवार को सियोल के सेओ सोमुन श्राइन इतिहास संग्रहालय में 1,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र मिसा समारोह में भाग लिए। सियोल के महाधर्माध्यक्ष पीटर ने अपने प्रवचन में कहा, उत्पीड़न की परीक्षाओं में भी इन शहीदों ने प्रभु में अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। उनके धैर्य ने उनके विश्वास को और गहरा किया, जिसने अंततः सच्ची आशा के रूप में फल दिया और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। 5 जुलाई 1925 को संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पापा पीयूस 11वें द्वारा 79 कोरियाई शहीदों को धन्य घोषित किया गया था। इसके बाद संत पापा पॉल षष्ठम ने 1968 में 24 शहीदों के एक दूसरे समूह को धन्य घोषित किया और 1984 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें संत घोषित किया। पवित्र मिसा समारोह के बाद श्राइन में विश्व की आत्माएं नामक एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया जो 14 सितंबर तक चलेगा। उधर संयुक्त राष्ट्र ने सूडान की उत्तरी दारफूर प्रांत में गंभीर स्थिति की चेतावनी दोहराई, जहां संघर्ष के कारण भोजन और स्वच्छ पानी की भारी कमी हो रही है। सूडान के उत्तरी दारफूर प्रांत की राजधानी एल फशर शहर में 5 साल से कम उम्र के लगभग 40% बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं, जिनमें से 11% बच्चों में गंभीर कुपोषण का निदान किया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।